शांति की शांति है। प्रकाश पुंज का ये भंडार हम आत्माए ही पे रहते, यही हमारा है संसार।
जापान का एक बहुत बड़ा मंदिर कहो या मठ, एहेजी टेंपल, जिसमें हजारों सन्यासी योगी अपनी साधना करते हैं, वहां का मठाध्यक्ष केटानो केम्पो नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी 1933 में मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन कहानी में एक बहुत सुंदर वृत्तांत लिखा है। ये वो व्यक्ति है जिसने हजारों योगियों को तैयार किया था। उसने लिखा कि जब मैं 22 साल का था, भटक रहा था, यहां वहां घूमता था, ब्रह्मचारी था, और एक बार ऐसे ही घूमते घूमते कुछ लोग उसे मिल गए, और उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उसे एक विशिष्ट प्रकार की सिगरेट, बीड़ी पीने की दे दी, और वो पीते ही उसे बहुत आनंद आया। और जैसे ही उसने पी, उसके मन में विचार आया, यदि मैं ऐसा ही पीता रहा और यही आनंद मुझे मिलता रहा इंद्रिय सुख का, तो हो सकता है ये मेरे मेडिटेशन में, ध्यान में बाधा हो जाए। तुरंत उसने संकल्प किया, आज से मैं इसे छोड़ रहा हूं, इससे पहले कि ये बहुत बड़ी लत बन जाए। जब वो किटानो केम्पो 25 वर्ष का हुआ, उसने लिखा, मैं एक छोटे आश्रम में रहता था और जो हेडक्वार्टर था वहां से थोड़ा दूर था। उन सन्यासियों का मठ, और सर्द के दिन थे, बहुत ठंड थी, तो मैंने खत लिखा अपने जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वहां के वरिष्ठ जो साधु थे, कि मुझे कपड़े चाहिए ठंडी के लिए, गर्म कपड़े चाहिए। और उसने इंतजार किया एक मास, कोई उत्तर ही नहीं आया, ऐसा तो होता नहीं। और उसी समय वो एक जैन फिलॉसफी की किताब पढ़ रहा था, आई किंग नाम की, जिसमें दिव्य शक्तियों का वर्णन था, कैसे दूर की आवाजें सुनी जाए, कैसे दूर के संदेश पकड़े जाए बिना बोले, कैसे दूर श्रवण किया जाए, दूर दर्शन हुआ जाए, ये सारी बातें। उसने कहा मैं इस पे प्रयोग करता हूं, और उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा ध्यान उस किताब के अध्ययन में लगा दिया, और वो अध्ययन करते करते उसमें शक्ति आ गई, और उसने ये जाना कि मेरा वो खत वहां तक पहुंचा ही नहीं है। फिर उसने कंफर्म किया कि वास्तव में ऐसा हुआ और उसे पता चलता है हाँ खत पहुंचा ही नहीं है, तो उसे थोड़ी खुशी होती है कि मुझ में ये शक्ति आ गई है, दूर की खबरें मैं यहां बैठे जान सकता हूं। तुरंत विचार आया, मैं यहां ये करने आया हूं या ध्यान सीखने आया हूं, और तुरंत किताब को पढ़ना बंद कर दिया और छोड़ दिया, अब इसके बाद में उसको कभी नहीं करूंगा। ये दूसरा अनुभव उसने लिखा, जब मैं 28 वर्ष का था तब अचानक मेरी रुचि चाइनीज कैलीग्राफी और पोएट्री में हो गई। चाइनीज कैलीग्राफी अर्थात अच्छे से स्वर्ण अक्षर लिखना, हस्ताक्षर की कला, लिखने की कला, और मैं इतना एक्सपर्ट हो गया उसमें कि मैं रोज कविता लिखने लगा। और एक दिन अचानक विचार आया, मैं यहां कविता कवि बनने आया हूं या योगी बनने आया हूं, ये भी मेरे मार्ग से मुझे भटका रहा है। मैं करने के आया था और कर क्या रहा हूं? क्या कविता लिखना और इन सब बातों में जाना मेरा लक्ष्य है? इससे प्रसिद्धि होगी, इससे मेरा नाम होगा, पर मेरा योग, मेरा योगी बनने का लक्ष्य दूर हो जाएगा। तुरंत छोड़ देता है। ये तीन बातें उसने अपने जीवन कहानी में वर्णन की है कि कैसे वो डिटैच हो गया। अभी बस अटैचमेंट होने ही वाली थी, आसक्ति उत्पन्न नहीं होने वाली थी, और बंधने वाला था किसी अनजान बंधनों में जिसका क्या परिणाम होगा दूरगामी पता नहीं, पर अंतरात्मा ने आवाज दी स्टॉप और वो रुक गया। स्वयं स्वयं के अंदर की आवाज सुनना, स्वयं स्वयं को देखना, सुबह की साकार मुरली, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चक्र घुमाओ, स्वयं को ही देखो, स्वयं के गहरे से गहरे लगाव को देख लेना, स्वयं की गहरी से गहरी आसक्ति को देख लेना, उस विचार को देख लेना जो विचार से पहले आ रहा है, थॉट बिफोर द थॉट, उस भाव को देख लेना जो कामना से भी पहले आ रहा है, वो सूक्ष्म तरंगे विचारों की हलचल, वहां पर कार्य करना है। कार्य वहां नहीं करना है जहां कर्म तक आ गया, कर्म तो बहुत आगे की बात है, जो देखना नहीं था वो देख लिया और फिर पश्चाताप कर रहे नहीं देखना चाहिए था। और फिर दुख कर रहे हैं संसार भर के युवक, और जिन्हें ज्ञान की थोड़ी समझ आ गई है, और सारा समय पवित्रता के खंडन का पश्चाताप में बिता रहे हैं। तो स्व को देखना, स्व का दर्शन करना, बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। भक्ति मार्ग में सुदर्शन चक्र का गायन है, किसके पास दिखाया है? कृष्ण के पास, मूलतः विष्णु के पास। और कैसी रोचक कहानी लिखी है कि विष्णु ने तपस्या की, आराधना की, किसकी? शिव की, शिव की आराधना की। 999 कमल पुष्प अर्पित किए शिव के चरणों में, और हजारवा अपना नयन निकाल के रख दिया, तब शिव प्रसन्न हुए और उसको अपने संकल्पों से, शिव ने अपने संकल्पों से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और विष्णु को दिया। ऐसा गायन है। शिव जब ब्रह्मा तन में आता है तो सबसे पहले उसको सुदर्शन चक्रधारी बनाता है। उन्होंने सुदर्शन अर्थात वहां नेत्र दे दिया था, शुभ दर्शन, परंतु वास्तविक था स्व का दर्शन। उस सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया जिसने 100 अपराध किए थे। हमें भी ये स्वदर्शन चक्र घुमाना है और अंदर बैठे सूक्ष्म शिशुपाल को नष्ट करना है। उस सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने जयद्रथ, उस चक्र से सूरज को नीचे कर दिया और वो जयद्रथ जो अहंकारी था और जो छल का प्रतीक था वो भी अर्जुन के बाणों द्वारा मारा गया। हृदय में यदि कोई जयद्रथ बैठा है जो छल का प्रतीक है उसे नष्ट करना है। इसी चक्र से विष्णु ने वो जो सती की शरीर था उसके टुकड़े कर दिए थे, वो लेके घूम रहे थे, शंकर दिखाया है, और वो जहां जहां टुकड़े गिरे वहां शक्ति पीठ बिने। सती का वो मृत देह अर्थात अतीत, अतीत की यादें, अतीत की बातें, अतीत की दर्दनाक घटनाएं इसी चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो शास्त्रों में रमणीक घटनाएं हैं और उन सब का आधार संगम युग है। तो आज हम देखेंगे वो पांच स्वरूप और उनमें क्या क्या करना है। सबसे पहला अनादि स्वरूप परमधाम, उसके बाद आदि स्वरूप सतयुग त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप और उसके बाद फरिश्ता स्वरूप। ऐसी ये पांच बातें हैं। जब हम योग करें या इन पांचों स्वरूप का अभ्यास करें, एक एक बात में स्थित होते जाना है। पिछले किसी क्लास में हमने परमधाम की चर्चा की थी। परमधाम के पांच सात स्वरूप, परमधाम के साथ स्वरूप है, देवताओं के साथ स्वरूप है, पूज्य के साथ स्वरूप है, ब्राह्मण के साथ है और फरिश्ते के साथ। ऐसी सात सात बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब मैं आत्मा परमधाम में हूं तो अपने सात स्वरूप में स्थित हूं। सबसे पहला स्वरूप है निज स्वरूप और निज में वो सारी सात बातें। मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सुख स्वरूप। जैसे ही परमधाम में जाए अपने इन स्वरूप में स्थित होना है और इसी का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। लंबा समय तक परमधाम में रहना ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे आत्मा में एकदम बल भर जाता है, शक्ति आ जाती है, जो संसार की चेतना से दूर। तो सबसे पहला स्वरूप परम धाम का है निज स्वरूप। दूसरा स्वरूप है पांच तत्वों के आकर्षण से परे। मैं आत्मा परम धाम में हूं, पांचों ही तत्वों के आकर्षण से परे हूं, और जब पांच तत्वों का आकर्षण ही नहीं तो देह का भी आकर्षण नहीं। कोई सोचता है दो मीठी चीजें हैं, आज इसको छोड़ता हूं कल उसको छोड़ता हूं, आज गुलाब जामुन छोड़ता हूं कल जलेबी छोड़ता हूं, फिर तीसरे दिन सोचता है ये दिल खुश मिठाई आज छोड़ता हूं। कहां तक छोड़ोगे? जितना छोड़ोगे एक नई चीज आ जाएगी। छोड़ना किसे है? उस बीच में जो एक मूल तत्व घूम रहा है। अगर कोई ये सोचे ये चक्कर से मुझे दूर रहना है, अपने आप वो सब छूट जाएगा फिर, क्योंकि हर चीज में जो शक्कर है फिर वो मैं नहीं दूंगा। इस देह में पांच तत्व है, किस किस की देह से डिटैच होंगे? आज इससे लगाव है, कल उससे लगाव, आज इसने धोखा दिया तो इससे वैराग आ गया पर फिर दूसरा पकड़ रहा है। नाम और रूप की बीमारी, कल के मुरली के प्रश्न का उत्तर, कठोर बीमारी है। एक से वैराग आता है तो दूसरी की ओर, और जरूरी नहीं देह, उसके गुण, उसकी विशेषताएं खींचती है, आकर्षित करती है, लगाव है व्यक्तियों में। तो अभ्यास करना है, मुझे इन पांच तत्वों से ही वैराग है और मैं आत्मा परमधाम में हूँ, पांच तत्वों के आकर्षण से परे, वहां पर जितना आकर्षण से परे की स्थिति में रहेंगे, नीचे जब आएंगे तो ये जो देह है स्त्री और पुरुष, ये तत्व महसूस होंगे, खींचेंगे नहीं। दूसरा स्वरूप परमधाम का। तीसरा, मैं निराकार आत्मा हूं, मेरा कोई आकार नहीं, मैं बिंदु हूं, परमधाम में स्थित हूं। चौथा, मैं निर्संकल्प आत्मा हूं, कोई संकल्प नहीं है, सारे संकल्प विलीन हो गए। अगला, मैं निर्वाण हूं, वाणी से परे हूं, आवाज की दुनिया से मुझे वैराग है। जितना लंबा समय उस वाणी से परे की अवस्था में रहेंगे तो नीचे आएंगे और बोलेंगे तो भी वो बोल मौन से निकले हुए बोल होंगे, इसलिए उन बोल में एक अद्भुत आकर्षण होगा। उसके बाद में, मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं हूं मुक्ति धाम में, तो मुक्त हूं अर्थात कोई बंधन नहीं है, कोई सलाखे, कोई बेड़िया, कुछ नहीं है। कल की मुरली में था ना, भक्ति की बेड़िया, मोटी पतली बहुत है, बड़ी कड़ी बेड़िया है उधर भी। मैं आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हूं अर्थात मैं निर्बंधन आत्मा हूं। अगला, मैं निर्लेप आत्मा हूं। आत्मा को लेप छेप लगता है, पर मैं निर्लेप आत्मा हूं, यह हमारा स्वमान है अर्थात अप्रभावित, किसी से भी प्रभावित नहीं। इन सात स्वरूपों का परमधाम में बैठकर अभ्यास करना है, और पहले शब्दों के साथ, और धीरे धीरे शब्द नीचे गिर जाएंगे, और स्वरूप में स्थित होते ही शब्द जहां विलीन हो जाए वहां केवल स्वरूप रह जाएगा, फिर ये बोलने की आवश्यकता भी नहीं कि मैं निराकार हूं, मैं निरसंकल्प हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं मौन हूं, निर्वाण हूं, निर्बंधन हूं, पांच तत्वों के आकर्षण से परे हूं और अपने निज स्वरूप में स्थित हूं। केवल स्वरूप रह जाएगा, शब्द नीचे गिर जाएंगे। ये सबसे पहला स्वरूप है हमारा, अनादि स्वरूप, इसमें टिकने का अभ्यास करना है। हमारा दूसरा स्वरूप कौन सा है? देव स्वरूप। देव स्वरूप की सात बातें हैं, जो हर अमृत वेला एक बार तो याद करना ही है। 24 घंटे में देव स्वरूप की सात बातें याद तो करना ही करना है। सबसे पहला, 16 कला संपन्न हूं। मैं आत्मा कैसी हूं? सभी कलाओं से संपन्न हूं। एक भी कला ऐसी नहीं जो मुझ में नहीं है, सारी कलाएं मुझ में, अगर नहीं भी हो तो बोलते ही उसके आह्वान से वो प्रकट होगी। और जो अवगुण है और जो विकार है वो खट जाएंगे। वो जो सदर्शन सुदर्शन चक्र दिखाया, उसके 108 कांटे नुकीली धार दिखाई है, और इतना तेजी से वो जाता है, शत्रु का संहार कर ही वापस आता है। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं देव आत्मा हूं और 16 कलाओं से संपन्न हूं, सारे अवगुण समाप्त, पहला। संपूर्ण निर्विकारी, दूसरा संकल्प, मैं देव रूप में हूं। अपने आप को देव रूप में देखना। आज सुबह की साकार मुरली, श्वेत पोशाकधारी, इधर तुम अपने रंगीन वस्त्रों में हो, इधर तुम अपने फरिश्ता स्वरूप में हो, दोनों ही देखते रहो। ऐसा नहीं केवल प्रदर्शनी में दिखला दिया और खलास, दिन भर में भी चिंतन करो। जो चिंतन करेंगे वही मास्टर ज्ञान सूर्य है, मास्टर ज्ञान सागर है। सुबह की मुरली में था ना, शुरुआत ही वहां से है, प्रदर्शनी देख कर आए हो। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं, बहुत शक्ति है संकल्प में। तीसरा, मैं संपूर्ण अहिंसक हूं। अहिंसक अर्थात फिर कामना की भी हिंसा नहीं, कामना भी हिंसा है। संडे की मुरली, तुम्हें अपनी भी कामनाएं जो है, अंदर की हद की कामनाओं को नष्ट करना है, तभी संसार की आत्माओं की कामनाएं तुम पूर्ण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? सर्वश्रेष्ठ बुझाए हो। तुम कौन हो? तुम बड़े हो इस वंशावली के। तुम कौन हो? कामधेनु हो। तुम कौन हो? चैतन्य भंडार हो। तुम कौन हो? विश्व रक्षक हो। तुम कौन हो? विश्व उद्धारक हो। तुम कौन हो? जहान के नूर हो। तुम कौन हो? जहान के कुल दीपक हो। तुम कौन हो? तृप्त आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, संपन्न आत्मा हो। कितने समान थे संडे की मुरली में, इच्छा मात्र अविद्या तुम्हारा स्वभाव है। तो दूसरा, तीसरा, मैं संपूर्ण अहिंसक हूं। चौथा स्वरूप देवताओं का, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। सारी मर्यादाएं मुझ में समाई हुई है। महारामायण में वर्णन है, हनुमान जी पहुंचते हैं लंका, सीता से मिलते हैं, प्रभु मुद्रिका देते हैं और सीता का विलाप देखते हैं। कितना उसको वो राक्षसिनी तंग कर रही थी, छिपके से झाड़ से देखा। और फिर वार्तालाप के दौरान सीता से कहते हैं कि आपको मैं अभी श्री राम जी के पास ले चलता हूं, कोई मेरी गति का सामना नहीं कर सकता इस लंका में, आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी ले चलता हूं। सीता ऐसा एक जबरदस्त उत्तर देती है, वो कहती है मैं स्व इच्छा से किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, वो मेरी मजबूरी थी जब रावण मुझे लाया था, इसलिए प्रभु श्री राम को आने दो, वो ही मुझे ले जाएंगे। और मैं जानती हूं कि तुम ले कर भी सकते हो, ऐसे तुम में इतना साहस सामर्थ्य है, परंतु ये मर्यादा है। कैसी सूक्ष्म बात कह दी। तो मैं कौन हूं? चौथा, कैसा देव स्वरूप में, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। अगला, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं। निर्विकारी हो गया, हो गया। मैं सतो प्रधान हूं। कैसा हूं देवता? सतो प्रधान, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में हूं। उसके बाद में मैं आत्माभिमानी हूं। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा कि देवताएं जो थे कैसे थे? आत्माभिमानी थे। उनके पास परमात्मा अभिमान नहीं था, पर यह तो पता था कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये शरीर अब छोड़ रहा हूं, अब नया शरीर लेने वाला हूं, साक्षात्कार हो जाता था कि इस गर्भ में जाने वाला हूं, शरीर खत्म, कोई रोना नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सतो प्रधान और आत्मा अभिमानी हूं। सतयुग की बातें चल रही है, वहां देखना अपने आप को घूमते हुए सतयुग के उस परिसर में, उस पुष्पक विमान को, देवताओं को, उस राज प्रासाद को, लक्ष्मी नारायण को, एक छत्र साम्राज्य को, सतयुग की सारी दिनचर्या का वर्णन है मुरलियों में। उसमें स्थित हो जाना। और सातवा, देवता अर्थात दिव्यता संपन्न, उनमें एक अलौकिक दिव्यता है। ये देव स्वरूप के सात स्वरूप, ये दूसरा। तीसरा स्वरूप हमारा कौन सा है? पूछ, क्या देखेंगे इसमें? मंदिरों में स्वयं को स्थित करना, कोई एक तीर्थ स्थान है जहां पर एक मंदिर है, या कोई पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर है, जय माता दी करके भक्त गा रहे हैं, आ रहे हैं। तो देव स्वरूप में सबसे पहला है मैं, पूज्य स्वरूप में मैं शक्ति संपन्न हूं। मुझ में सारी शक्ति है, यदि मैं दुर्गा हूं, काली हूं, शिव शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, मुझ में अथाह शक्तियां है। शक्तियां मांगने वाली नहीं, दूसरों को शक्ति प्रदान करने वाली हूं, इसके लिए कमजोर नहीं हो सकती, पावर है, शक्ति है, मैं शक्ति संपन्न हूं। दूसरा, मैं संहारी मूर्त हूं। जो भी असुर संहार असुर है उनका क्या करने वाली हूं, संहारी, संहार, महिषासुर मर्दिनी। जितने असुर होंगे सब नष्ट हो रहे, यही देखना मेरे ही अंदर। इस आत्मा से एक असुर प्रकट हुआ और वो आगे आगे जा रहा है, और मैं देवी मेरे हाथों से दिव्य शक्तियां निकल रही है, आग का गोला, और उसको जाके भस्म कर रहा है। अंदर का कोई एक संस्कार, वो संस्कार रोने का हो सकता है, रूस में रूठने का हो सकता है, उसी को राक्षस के रूप में देखना। वो दिखाया ना देवी का वो गोला, वो भाग रहा है असुर आगे, पीछे वो शक्ति और असुर का नाश कर रही। तो मैं कौन हूं, शक्ति संपन्न हूं, मैं कौन हूं, संहारी मूर्त हूं। तीसरा, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, भक्तों को साक्षात्कार करा रही हूं। बाबा ने कहा है तुम्हें साक्षात्कार कराना होगा, तुम्हारे द्वारा ही साक्षात्कार होगा, अभी होगा, तुम ही इष्ट देव हो भक्तों के। संडे की मुरली, हल चलाओ, समय हल है, हलचल है, यही है, यही है, यही है। बीज अनुभव, फसल प्रत्यक्षता, जमीन आत्माओं की बुद्धि, उस पर हल चलाओ, तुम रूहानी किसान हो। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण दो सोने में नग, शांति के तीर चलाओ, झरना जिसमें वो शीतलता का अनुभव, सत्संग। याद आ रही है मीटिंग्स में आए हुए भाई बहनों से मुलाकात, संडे की मुरली कितनी सारी बातें बोल दी है उसने। ईट संकल्पों की पक्की हो। तो मैं कौन हूं, तीसरा साक्षात्कार मूर्त, अगला मैं वरदानी मूर्त हूं, आत्माओं को वरदान देने वाली हूं, एक एक आत्मा को वरदान दे रही हूं, आत्मा भरपूर हो रही है, पवित्रता का वरदान दे रही हूं। विकारी आत्मा इतनी डूब गई है विकारों में, पावर ही नहीं है कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करेगी, मैं उसे वरदान दे रही हूं, अखंड ब्रह्मचारी भव। उसके बाद में अगला, मैं भक्त वत्सल आत्मा हूं, शरणागत वत्सल आत्मा हूं, जो जो शरण आएगा उस भक्त को प्रेम करने वाली, इष्टदेव भक्त वत्सल होते हैं। तो मैं कैसी आत्मा हूं, भक्त वत्सल आत्मा हूं। उसके बाद में कई मुरलियों में बाबा ने एक शब्द का प्रयोग किया है, दिव्य दर्शनीय मूर्त। मैं कौन हूं, दिव्य दर्शनीय मूर्त हूं। ये सब देव स्वरूप में अपने याद करना है और उस स्वरूप में स्थित होना है, और 24 घंटे में एक बार ये सातों पांचों स्वरूप की सारी बातें बुद्धि में घुमानी है। कुछ बातें हम बता रहे हैं, आप अपने आप से कुछ बातें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कितने हो गई देव स्वरूप की, पूज्य स्वरूप की, 6। सातवा, मैं आकर्षण मूर्त हूं। देवताएं क्या करते हैं, पूज्य मंदिरों में लोग जाते हैं, क्या होता है, आकर्षण होता है, उनको खींचते हैं, मूर्ति के सामने बैठ के देखते रहते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, ढोल बजाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, झूमते, भजन कीर्तन गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको उस मूर्ति को देखना, क्योंकि उस मूर्ति में आकर्षण है। तो मैं आकर्षण मूर्त हूं, आकर्षण मूर्त होता है शरीर का आकर्षण नहीं, इस आत्मा की प्यूरिटी का आकर्षण। देह तो आज है कल नष्ट, सुबह कहा बाबा ने मरो हे, मर जाओ, मरो हे जोगी मरो। तो ये हो गया तीसरा स्वरूप पूज्य। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप के तो हजारों समान है, कुछ हम बता रहे हैं। सबसे पहला, मैं आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी आत्मा हूं, याद मेरे लिए स्वाभाविक है, सहज है। मैं आत्मा अभिमानी हूं और परमात्मा अभिमानी हूं। आत्मा अभिमानी बनना बहुत सहज है, क्योंकि मैं हूं ही, इसी का अभ्यास और उसकी याद सहज है, कुछ दिन पहले मुरलियों में था, तलवार की धार है योग। तो याद स्वरूप आत्माभिमानी परमात्माभिमानी, मैं ब्राह्मण, दूसरा संपूर्ण पवित्र हूं, संपूर्ण प्यूरिटी मेरा स्वभाव है, मुझे प्यूरिटी कहीं से लानी नहीं है, प्यूरिटी के बारे में कुछ करना नहीं है, वो मैं हूं ही। कुछ करने से ही तो अपवित्र हो गए, अब अपने आप में स्थित हो जाओ, वो आत्मा स्वतः ही पवित्र है, संपूर्ण पवित्र हूं। और भगवान ने प्यूरिटी का बल भराया, कल की मुरली में था साकार, तुम में 100% प्यूरिटी है, वहां नहीं यहां की बात की थी बाबा ने। तो मैं कैसी आत्मा हूं ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्र, ये समान है संगम युग के ब्राह्मण जीवन का। उसके बाद में मैं माया जीत हूं और प्रकृति जीत हूं, एक साथ दोनों, मैंने माया को भी जीता है और प्रकृति को भी जीता है। और जब भी कोई समान लेंगे उनका तीन रूपों से अध्ययन करना है, पहला वर्तमान, दूसरा भविष्य और तीसरा नेचुरल। उदाहरण, एक व्यक्ति है 40 साल से दारू पीता है, उसे दारू छोड़नी है, तीन स्वरूपों में अभ्यास करेगा। पहला, मैं दारू छोड़ रहा हूं, वर्तमान। दूसरा, भविष्य, मैं जल्द ही दारू छोड़ने वाला हूं। तीसरा, सहज, ये सबसे सहज काम है दुनिया का, छोड़ना। ये तीन रूपों में किसी भी संस्कार पर जीत प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है। कोई स्मोकिंग करता है, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी आज से, या फिर मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, छोड़ने वाला हूं। और तीसरा बहुत सहज काम है ये, उसी तरह किसी को रोने का संस्कार है, जब तक आंखों से आंसू नहीं आते ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या ही पूरी नहीं होती, ऐसे कौन कौन है, एक बार तो आने ही चाहिए। मैं रोना प्रूफ आत्मा बन रही हूं, मैं रोना प्रूफ बन जाऊंगी। और तीसरा, मैं रोना से तो एकदम ही आसान है, ये तो सबसे सहज काम है दुनिया का, इससे सहज तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी एफर्मेशन को, किसी भी सम्मान को, किसी भी ऑटो सजेशन को, किसी भी आत्म सुझाव को तीन रूपों में अभ्यास करना है। कोई एक लत लग गई है कि जो छूटी नहीं रही है, कोई इंटरनेट पे ही चिपका हुआ है, बेचैनी होती है। वो कहानी है ना, द्वापर युग में मनुष्यों ने जाल डाला, मछली को फांस लिया, मछली ने कहा मैं तुझे शाप देती हूं कि एक दिन यही जाल, यही नेट तुझे भी फांसेगा। वो अभी पूरा हुआ है, खाली अंत में मछली का, द्वापर का दिया हुआ शाप पूर्ण हो रहा है कि मनुष्य फंस गया है उसमें। ये इससे मुक्त होना बहुत आसान है, मैं इससे मुक्त हो रहा हूं, मैं इससे मुक्त होने वाला हूं। और बहुत ही सहज है, तीन रूप, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। ये तीन रूपों में किसी भी एडिक्शन, किसी भी विकार, किसी भी संस्कार, किसी भी गहरे कड़े संस्कार से मुक्त होने की ये विधि मेडिकल साइंस में बताई जाती है। डी एडिक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, रिहैब सेंटर होते हैं, जो 40 वर्ष से दारू पी रहे, क्या करे, छोड़ते फिर चालू करते, छोड़ते फिर चालू करते, सब कर लेते पर फिर आ जाता है। जो काम वो लोग डी एडिक्शन में सिखाते हैं, वही काम इधर हमें भी करना है, क्योंकि हम भी एडिक्टेड हो गए बहुत सारी चीजों से। तो ये हो गया, कहां थे हम, ब्राह्मण में, तीसरा मैं माया जीत हूं और प्रकृति जीत हूं, ये तीसरा स्वरूप। चौथा, मैं निरंतर अथक सेवाधारी हूं, ये संकल्प की बात है। एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं थक जाऊंगा, वो थक जाता है। एक व्यक्ति जो सोचता है अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, नहीं चल पाता है। एक व्यक्ति सोचता है ये मेरा हाथ गया अब कब काम नहीं करेगा, वैसा ही होता है। एक व्यक्ति सोचता है कि अब मैं कभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं होऊंगा, कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि मन ने गहराई से पकड़ लिया है। और जो हम सोचेंगे वो होगा, भय है कहीं ऐसा तो ना हो जाए। एक व्यक्ति जहाज पर जा रहा है, उसको डर है कहीं मुझे उल्टी तो नहीं हो जाए। एक दूसरा व्यक्ति आके कहता है ऐसा लगता है शायद तुमको उल्टी होने वाली, और उसको हो जाती है फिर, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया उसकी बात को। एक है खुद के सुझाव, एक है दूसरों के सुझाव, दो है, ऑटो सजेशन हेटरो सजेशन। ऑटो सजेशन और हेटरो सजेशन अगर हाँ वो रिजेक्ट कर दिया होता, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तो प्रभाव नहीं होता। पर दूसरों ने सजेस्ट किया और अंदर से पहले से ही डर है, दोनों कंबाइन हो गया और परिणाम घटना। तो ब्राह्मण अर्थात क्या बताया, मैं अथक सेवाधारी हूं, संकल्प ही करना है कि मैं थकने वाला नहीं हूं। हनुमान जी जा रहे हैं लंका, बीच में मैनाक पर्वत आता है, वो कहता है कि आपके पिता पवन ने मुझ पर बड़ा उपकार किया था, आप थोड़े देर मुझ पर मेरे पर विश्राम करो। हनुमान बड़ा अच्छा वाक्य कहता है, हनुमान कहता है मैं राम के काज के लिए जा रहा हूं और राम के काज के लिए जाने वाले के लिए विश्राम पाप है। आराम हराम है, वो हमारा गायन है, हम परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं। तो समान क्या है ब्राह्मणों का, मैं अथक सेवाधारी हूं, कभी ना थकने वाला, निरंतर सेवाधारी। अगला समान, इच्छा मात्रम अविद्या, संसार की इच्छा है, संसार की भौतिक इच्छा है, ये सबसे मुझे कुछ लेना देना, मेरी एक ही इच्छा है विश्व कल्याण की इच्छा। जगदीश भाई ने एक जगह लिखा है, तुम्हारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मेरी कोई इच्छा नहीं संसार की, लौकिक वर्ल्डली, यही सबसे बड़ी इच्छा है, अगर है ही तो विश्व कल्याण की इच्छा। तो मैं कैसी आत्मा हूं, इच्छा मात्रम अविद्या। अगला समान, मैं एवर रेडी आत्मा हूं, तैयारी है, अब भी तैयार, अब भी बाबा यही आ जाए बाजू में अभी और कहे चलो, कितने लोग तैयार हैं, फोन किसको किसको करना है घर पर कि मैं जा रही हूं, लॉकर की उधर है, इसका ये सामान उधर है, उसका वो उधर है, बाबा कहे अब भी चलो, ऐसी तैयारी, अब भी यहां आ जाए और कहे चलो, डायरी पेन पेंसिल रख दो और चलो, डायरी भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, चलो अब भी, ऐसी तैयारी वाली आत्मा हूं मैं, एवर रेडी आत्मा हूं। कितने हुए, छह, वो आत्मा हूं, दोनों एक साथ कर सकते हैं, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा, ज्ञानी हूं योगी आत्मा हूं, अज्ञान वाले कर्तव्य मैं नहीं कर सकती, भोगी मैं नहीं बन सकती, मैं योगी हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा ऐसा बाप चैलेंज करता है कि कोई है जो याद में भोजन बनाए और स्वीकार करे, उसमें ताकत भर जाती है। हमारा भोजन करना भोग के लिए नहीं है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है और विश्व कल्याण के लिए और आत्मा की प्यूरिटी बढ़ाने के लिए है। वो भोजन तपस्या का ही एक काल बन जाए, तपस्या का काल है वो, तपस्या का पीरियड है, उसमें बैठ के हम तपस्या कर रहे हैं। अगर उसमें बैठ के कोई बात करते करते भोजन करता है और फिर स्वाद के अधीन होकर भोजन करता है और इसमें ये कम है उसमें वो कम है इसमें और क्या है उसमें और क्या है, तो ये योगियों का भोजन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मुरली में था कि योगियों का भोजन सूक्ष्म होता है और योगी की देह सूक्ष्म संकल्पों से चलती है। तो ये ब्राह्मण आत्मा के साथ स्वरूप, उसके बाद में अंतिम स्वरूप है मेरा फरिश्ता। फरिश्ता के साथ स्वरूप में सबसे पहला मैं उड़ने वाली आत्मा हूं, धरती पर पैर रखने वाली नहीं, धरती अर्थात देह, कीचड़ अर्थात ये देह, मैं ऊपर हूं, मेरा चेतना इस शरीर से के भोग से ऊपर उठी है, वो विकार से तो उसे सहज वैराग है, मैं आत्मा उड़ने वाली हूं आकाश में। दूसरा मैं आत्मा डबल लाइट हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्की हूं एकदम, कोई भी बोझ मुझे नहीं, अगर बोझ लग रहा है, भारीपन लग रहा है, सेवा का ही बोझ लग रहा है, तो वो फरिश्ता स्थिति नहीं हुई, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, वो समर्पण में जरा सी खोट है फिर, क्योंकि बोझ क्यों हो रहा है, ये कार्य किसका है, हम ये भूल रहे हैं शायद, समझ रहे मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये भूल ही रहे कि करने वाला कोई और है, मैं ही कर रहा हूं, ये भाव आ रहा है। होई सोई जो राम रचि राखा, तो मैं आत्मा कैसी हूं, मैं फरिश्ता, डबल लाइट ये दूसरा। तीसरा, फरिश्ता अर्थात साक्षी और उपराम। 24 घंटे में इस भाव का अभ्यास करना, ये सारा ड्रामा चल रहा है और मैं इसको साक्षी होकर देख रहा हूं, ये मैं भी हूं उस ड्रामा में, ये यहां बैठा है, इनसे बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, योग कर रहा है, ज्ञान सुना रहा है, सुन रहा है, क्लास कर रहा है, करा रहा है, कुछ तो कर रहा है, ये सब ड्रामा हो रहा है, पर मैं फरिश्ता उपराम हूं, साक्षी हूं, सब कुछ खेल देख रहा हूं दूर से बैठकर। तो साक्षी और उपराम। अगला, मैं फरिश्ता लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, शक्ति संपन्न हूं और लाइट हूं, मेरी किरणें सारे विश्व में फैल रही है, ये ग्लोब है और मैं फरिश्ता सारे के सारे ग्लोब को प्रकाशित कर रहा हूं, इतनी पावर इसमें जा रही है मुझसे, ये फरिश्ता। अगला, मैं फरिश्ता अंतवाहक शरीरधारी हूं, लाइट के कार्ब में हूं, मुरलियों में शब्द आए, चमकीली ड्रेस वाला हूं, ये जो मेरा शरीर है ये कार्ब है, लाइट की कार्ब, मैं इसी में हूं, पर ये लाइट का शरीर है, चलता हूं तो जैसे लाइट चल रहा है, देखता हूं तो लाइट दिखाई देते हैं, सारी चीजें लाइट की देखनी, ये भी एक दिन अभ्यास करना है कभी, सारे दिन भर जो भी चीजें देखो लाइट देखना, ये माइक लाइट का बना हुआ, मैं आत्मा लाइट, ये भोजन की थाली लाइट की बनी हुई, जो वस्तु है उसमें रखी है भोजन वो भी लाइट, मेरा हाथ लाइट, जो खा रहा हूं वो लाइट, शरीर में जा रहा है लाइट बन रहा है और लाइट फैल रही है, ये कितना अच्छा अभ्यास है भोजन का, ये सब कुछ लाइट ही लाइट है, सब लाइट, ये हॉल लाइट का बना हुआ है, ये घड़ी लाइट की बनी हुई है, ये फैन लाइट का बना हुआ है, हर चीज लाइट की बनी हुई है, जैसे सूक्ष्म वतन यहां अवतरित है, ये बड़ा अच्छा एक अभ्यास है, आंतरिक अभ्यास करते रहना है। तो फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस, उसके बाद में कितने हुए, छह, पांच, फरिश्ता अर्थात एक सिरिश्ता, संसार में सबसे रिश्ते हैं परंतु डिटैच्ड है, वो निभा रहे हैं संबंध, पर असली रिश्ता केवल एक से है, अंतर मन में पता है एक वही है जो काम आने वाला है। इन अवर ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ नीड वी आर अलोन, जब ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में जब हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है, उस समय ये जीवन का सत्य है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, जिनको हम अपना समझते हैं सब धोखा देंगे, इस संसार में हमारा सगा कोई है क्या, कोई भी नहीं है, सगा एक बाप ही है बस, जिसको सगा समझेंगे और जिस दिन सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता होगी उसी दिन वो नहीं रहेगा, उसी दिन उस तक उसकी मदद नहीं आएगी, इसलिए सारे रिश्ते एक से जोड़ने, ये छठवा। और सातवा आज की मुरली का वरदान क्या था, फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा, चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई घृणा करे क्या करना है उसके साथ, प्यार ही देना है, फरिश्ते के पास अंतर में कुछ है ही नहीं दूसरा प्यार के सिवा। तो ये फरिश्ते की सात बातें हैं। तो हमने परमधाम में स्थित होना, परमधाम के सारे रूपों को याद करना, नीचे उतरना सतयुग के सारे रूपों को याद करना, और नीचे उतरना द्वापर में पूज्य स्वरूप मंदिर में हूं, पूजा हो रही है, भक्त हजारों सम्मुख है, मैं गणेश हूं, गणेश के सारे रूपों को याद कर सकते, मैं हनुमान हूं, उसके सारे रूपों को, अतुलित बलधामा शक्ति से संपन्न हूं, राम काज करीबे को आतुर, उसको राम काज के सिवा कुछ सुनता है सोचता ही नहीं, राम रसायन जिसके पासा, राम रसायन भरा है अंदर और कोई नहीं है, जल भी लांज गए अचरज नहीं, जल भी लांज कर चला जाऊंगा असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं है, परमात्मा शक्तियां अंदर काम कर रही है, ऐसी अखंड ब्रह्मचारी। हनुमान हमारा प्रतीक है। एक और उदाहरण है हनुमान के जीवन का जो कुमारों के लिए बड़ा काम का है, हनुमान लंका में जाता है, सीता माता को ढूंढ रहा है सब जगह, उसे पता ही नहीं वो है कहां, और बहुत सारे स्त्रियों के चेहरे देख लेता है। वापस जब आता है जामवन से कहता है मेरे से जरा आत्मग्लानी हो रही है। कहते क्यों? वो कहते जब मैं सीता माता को, ये जरा गुप्त बात है आपको बता रहा हूं, ऐसा वो जामवन से कहता है कि जब मैं सीता मैया को ढूंढ रहा था तो बहुत सारे स्त्रियों के चेहरे मुझे देखने पड़े कि कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। जामवंत उसको समझाते, चिंता मत करो क्योंकि तुमने हर स्त्री में सीता मां को ही देखा था, इसलिए तुम अखंड ब्रह्मचारी ही हो। तो पूज्य स्वरूप, उसके बाद में ये ब्राह्मण स्वरूप के तो रोज की मुरलियों में सुमानाते, तुम राजयोगी हो, कैसी जटाओ वाले सुबह है ना, कौन से राजयोगी हो, जटाधारी, जटाधारिक राजयोगी हो, ढेर सारे मुरलियों में समान आते हैं। और फिर अपने संपूर्ण स्वरूप फरिश्ते को देखना है। अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे और इन्हीं पांच स्वरूपों का गीत के साथ अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
वैकुंठवासी